सर्व जगन्निवास निवास भूतानितरामरेधे भोजेन्द्र गेहे अग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। बोले माताएं सा देवकी वे देवकी देवी सर्व जगत निवास सारे ब्रह्मांड को धारण करने वाले भगवान का मस्थानी सर्वभूतानी निवास भूता देवकी की कुक्षी अब निवास बनी हुई है। नितराम विस्तार से ना नहीं रेजे प्रकाशवान हो उठा भोजेंद्र गेहे कंस के घर की चार दीवारी के भीतर अग्निशिखा इव आग की लपटों के समान रुदधान ढकी हुई सरस्वती विद्या ज्ञान खले ज्ञान खल नामक व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति में जो ज्ञान होने पर भी उसको वितरित नहीं करता यथा जिस तरह सती होकर भी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तब देवकी ने समस्त कारणों के कारण समग्र ब्रह्मांड के आधार भगवान को अपने भीतर रखा, किंतु कंस के घर के भीतर बंदी होने से वे किसी पात्र की दीवालों से आवृत अग्नि की लपटों की तरह या उस व्यक्ति की तरह थी जो अपने ज्ञान को जन समुदाय के लाभ हेतु वितरित नहीं करता। तात्पर्य इस श्लोक में ज्ञान खल शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो वितरण के लिए होता है, यद्यपि पहले से ही पर्याप्त ज्ञान है, किंतु जब भी वैज्ञानिकों या दार्शनिकों कोई नया ज्ञान सूझता है तो वे उसे विश्व भर में वितरित कर देना चाहते हैं, अन्यथा वह ज्ञान कर्मशः सूख जाता है और उससे कोई भी व्यक्ति लाभ नहीं उठा पाता। भारत के पास भगवद गीता ज्ञान है, किंतु दुर्भाग्यवश किसी न किसी कारणवश इस विद्या इस दिव्य भगवद ज्ञान का विश्व भर में वितरण नहीं हो पाया, यद्यपि ये सारे मानव समाज के निमित्त है। इसलिए कृष्ण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने सारे भारतीयों को आदेश दिया कि वह भगवद गीता के ज्ञान का सारे विश्व में वितरण करने का भार अपने हाथ में ले। जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमार आज्ञा गुरु हो या तारा ये देश। भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत में दिए गए भगवान श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए हरेक को उपदेश दो। इस तरह आध्यात्मिक गुरु बनकर इस देश के हर व्यक्ति को मुक्त करने का प्रयास करो। चैतन्य चरितामृत मध्य 7:128। यद्यपि भारत के पास भगवद गीता का दिव्य ज्ञान है, किंतु भारतीयों ने इसे वितरित करने का अपना कर्तव्य नहीं निभाया, इसलिए अब इस ज्ञान को यथारूप में बिना किसी विकार के वितरित करने के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना की गई है। यद्यपि इससे पूर्व भी भगवद गीता के ज्ञान का वितरण करने के प्रयास हुए हैं, किंतु इन प्रयासों में विकृति तथा संसारी ज्ञान से समझौता किया जाता रहा है। लेकिन अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवद गीता यथारूप का वितरण कर रहा है और इस ज्ञान का लाभ उठाकर कृष्ण भावनामृत की ओर जग रहे हैं और कृष्ण के भक्त बन रहे हैं। इस तरह ज्ञान के समुचित वितरण के शुभारंभ से न केवल सारा विश्व लाभान्वित होगा, अपितु मानव समाज में भारत की कीर्ति बढ़ेगी। कंस ने कृष्ण भावनामृत को अपने घर के भीतर भोजेंद्र गृहे बंदी बनाने का प्रयास किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह अपने सारे ऐश्वर्य समेत नष्ट हो गया। इसी तरह भगवद गीता के असली ज्ञान का गला ढोंगी भारतीय नेताओं द्वारा घोटा जा रहा था और परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति तथा भगवत ज्ञान नष्ट हो रहा था। किंतु अब कृष्ण भावनामृत के प्रसार के साथ ही भगवद गीता का सही उपयोग होने लगा है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देवताओं के द्वारा प्रार्थना की गई थी। जब देवताओं ने देखा कि कंस का कारागार प्रकाशित हो गया है, किस कारण से प्रकाशित हुआ है? क्योंकि माता देवकी के गर्भ में स्वयं परम भगवान कृष्ण प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए कंस का कारागार जो अंधकार से भरा हुआ था, अब चारों ओर प्रकाश फैल गया है। इसी तरह हमारे जीवन में भी अंधकार फैला हुआ है, अज्ञानता का अंधकार, अविद्या का अंधकार, और अविद्या का ही प्रचार हो रहा है। जैसे यहां प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग और दार्शनिक लोग जो हैं अविद्या का ही प्रचार कर रहे हैं, अज्ञानता का प्रचार कर रहे हैं, और इस अज्ञानता के प्रचार से किसी को लाभ नहीं मिलता है, अभी तो नुकसान ही होता है। अविद्या के प्रचार से केवल लोग अविद्या में ही प्रवेश करते हैं, क्योंकि जड़ वस्तु का अगर प्रचार किया जाएगा या इस जड़ ज्ञान का प्रचार किया जाएगा तो सामान्य लोगों की जो चेतना है और ज्यादा जड़ में प्रवेश करेगी। शरीर अविद्या जाल, जड़े इंद्रिया ताहे काल। हमारा जो शरीर है अविद्या का जाल है और काल की तरफ बढ़ रहा है, तो काल की तरफ जो बढ़ रहा है शरीर, उसके बारे में जानकारी रखना या उससे संबंधित कोई भी जड़ पदार्थ की जानकारी रखना, ये अज्ञानता है, अविद्या। अविद्या दुख का एक कारण है, अविद्या क्लेश का एक कारण है। अविद्या सबसे बड़ी विद्या क्या है? मैं ये शरीर हूं, ये अविद्या है। तो जब तक ये अविद्या रहेगी तब तक वास्तविक सुख और वास्तविक आनंद की अनुभूति हम लोग नहीं कर सकते। माता देवकी को और वसुदेव जी को जंजीरों से झगड़ा गया, जंजीरों से बांध दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। किसी ने प्रश्न किया, किसी आईआईटी के स्टूडेंट ने प्रश्न किया, जब कंस को पता था कि माता देवकी के गर्भ से ही वो संतान उत्पन्न होने वाली है जिससे उसका वध होगा, तो क्यों कंस ने वसुदेव जी को और देवकी को एक साथ रखा? उनको अलग अलग रखना चाहिए था। तो बड़ा अच्छा उत्तर दिया गया, क्योंकि कंस जो है वो आईआईटी का स्टूडेंट नहीं था, नहीं वास्तव में कंस को वो पूरा विश्वास था वसुदेव जी के ऊपर। उस जमाने के जो राक्षस और असुर होते थे थोड़े बहुत धार्मिक विचार के तो होते ही थे, इसलिए कंस या हिरण्यकश्यपु जैसे राक्षस कभी कभी आत्मा का ज्ञान भी देते थे, आत्मा के बारे में जानकारी थी उन। भगवान से द्वेष था, भगवान से दुश्मनी थी, भगवान से भय था, लेकिन आत्मा के बारे में जानकारी थी। आजकल के असुर और राक्षस तो इतने गए गुजरे हैं वो आत्मा के ऊपर भी विश्वास नहीं करते। तो इस तरह से देखा जाए, इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल आत्मा के बारे में जानकारी रखना भी असली ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान तब है जब कोई भगवान के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि असुर और राक्षस भी आत्मा के बारे में जानकारी रखते हैं, ऐसे में शास्त्रों से पता चलता है। लेकिन ये असुर और राक्षस भगवान के बारे में जानकारी नहीं रखते, और जानकारी है भी कि कृष्ण अगर भगवान है तो फिर भी उनसे दुश्मनी मोल लेना चाहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अविद्या है, ये अज्ञानता है। तो भगवान से बैर रखना और दुश्मनी रखना, उनकी भगवत्ता को ना जानते हुए, भगवत्ता को जानते भी हैं फिर भी बैर रखना, ये सबसे बड़ी अविद्या है। भगवान गीता बता रहे हैं, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानमा माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है जो बहुत जन्मों के बाद जानता है, ऐसे ज्ञानी बहुत दुर्लभ है जो जान पाता है कि वास्तव में कृष्ण ही सब कुछ है। तो लेकिन अविद्या का ही प्रचार हो रहा है। ठाकुर भक्तिनोद बता रहे हैं, विद्यार विलासे कटाइनु काला परम साहसे आमी तुम्हारा चरण ना भजिनु कभू एको न शरण तुम। परम साहस के साथ मैंने भौतिक विद्या विलास में ही समय काट दिया, हे प्रभु मैंने तुम्हारे चरणों को कभी नहीं भजा, किंतु अब मैं एकमात्र तुम्हारे शरणागत। और आगे बता रहे हैं, पढ़ते पढ़ते मेरा भरोसा बढ़ा, क्योंकि मैं भौतिक ज्ञान को ही जीवन की असली गति मान बैठा था, ये आशा विफल हो गई, वह ज्ञान दुर्बल प्रमाणित हुआ। अब मैं जान गया हूं कि ऐसा सब ज्ञान अज्ञान है, सारी जड़ विद्या माया का वैभव है, जड़ विद्या माया वैभव तथा तुम्हारे भजन में बाधा है। इस अनित्य संसार के प्रति मोह जन्मा कर वह जीव को गधा बना देता है, वही गधा बनाकर मैंने अनेक काल तक संसार का बोझा वहन लिया। अब बुढ़ापे के समय शक्ति के अभाव में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जीवन अब यातना बन गया है, वह विद्या विद्या बन गई है और अविद्या की ज्वाला असहनीय हो गई है, वह विद्या शूल जैसे बन गई है। हे प्रभु, संसार में तुम्हारे चरणों के अलावा कोई अन्य धन नहीं है, इसलिए भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं यहां पर, भक्तिनोद जड़ विद्या को छोड़कर तुम्हारे चरणों को ही अपने जीवन का सार सर्वस्व बना रहा है। तुम्हारे आचार्य लोग भी बता रहे हैं और कुंती महारानी भी कह रहे हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भीर एदमाना मद अपमान। तो ये बहुत बड़ा मद है जड़ विद्या प्राप्त करना, और जड़ विद्या के कारण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने में और दिव्य ज्ञान को समझने में बहुत कठिनाई आती है, इसलिए ऐसे शिक्षित लोगों को प्रचार करना बड़ा मुश्किल होता है। जय श्री श्री राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। कृष्ण बलराम तो नजर ही नहीं आते व्यास। तो अभी बता रहे थे, क्या बता रहे थे, हाँ, जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको प्रचार करना, तथाकथित जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको प्रचार करना बहुत मुश्किल होता है। जितना जो जड़ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जड़ विद्या धारण कर लेता है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना उतना ही मुश्किल होता है। कोई अच्छे कुल में जन्म लेता है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना मुश्किल होता है। किसी के पास बहुत धन है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना बड़ा मुश्किल है। कोई बहुत सुंदर है, अधिक सुंदर है, उसको कृष्ण भावना भावित बनाना बड़ा मुश्किल होता है। ये सब वास्तव में बाधा है आध्यात्मिक जीवन के लिए। गांव में जाइए, सरलता से आप लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, लोग जल्दी माला पकड़ लेंगे। लेकिन अगर आपको शिक्षित संस्थाओं में या शैक्षिक संस्थाओं में जाके प्रचार करना है तो नाना प्रकार के षड्यंत्र रचने पड़ते हैं ऐसे विद्यार्थियों को कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो अविद्या का ही प्रचार हो रहा है, इसी कारण से कृष्ण भावना का प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहां पर माता देवकी के बारे में लिखा गया है, तो जंजीरों से झगड़ा गया, हमने बताया था। तो इसी तरह से हम लोग भी माया के जाल में फंसे हुए हैं, हमें भी जकड़ा गया जंजीरों से। किसी को सोने का जंजीर पहनाया गया है, किसी को चांदी का जंजीर पहनाया गया है, किसी को लोहे का जंजीर बनाया गया है। देवता लोग बड़े खुश हैं, उनको उनका कहना है कि हमें सोने का जंजीर मिला है। पृथ्वी लोक के जो लोग हैं वो दुर्भाग्यशाली हैं, उनको चांदी का या लोहे का जंजीर मिला है, हम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन सभी वास्तव में जंजीरों में जकड़े हुए हैं। ये अज्ञानता का जंजीर है, और जब तक हम हरि नाम का आश्रय नहीं लेंगे, है ना, नाम आश्रय करी जतने तुम्ही, क्या है, तखन आपन काज। तो नाम का आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। जब तक नाम का आश्रय नहीं लेंगे तब तक जो है इस माया रूपी जंजीर से छुटकारा नहीं पा सकते। तो माता देव की जंजीरों से जकड़ी हुई थी माता, और वसुदेव जी भी जंजीरों से जकड़े हुए थे। और जैसे ही भगवान कृष्ण उनके हृदय में प्रकट हुए, उनके गर्भ में प्रकट हुए, तो फिर जंजीर खुल गया, जंजीर खुल गया। तो इसी तरह से हम जब हरि नाम का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माया में ताम तरंती थे, बड़ी आसानी से माया को पार कर सकते। हम सभी माया के जाल में इसी तरह से फंसे हुए हैं। तो यहां लिखा है माता देवकी, श्रील विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं कि माता देवकी ने किसका आश्रय लिया है, भगवान कृष्ण ने किसका आश्रय लिया है, माता देवकी का आश्रय लिया है, जो सबको आश्रय प्रदान करने वाले हैं, समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगत को जो आश्रय प्रदान करने वाले हैं, आज उन्होंने माता देवकी का आश्रय लिया है। जिनके उदर में समस्त ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन्होंने आज माता देवकी का आश्रय लिया है। माता देवकी के उदर में परम भगवान कृष्ण अभी निवास कर रहे हैं, जो जगन निवास है, जना निवास बोलते हैं, जैसे हमारा जना निवास हो, या जगत निवास, संपूर्ण जगत निवास करता है, वो आज माता देवकी घर के घर में निवास कर रहे हैं। और साथ में यहां पे एक शब्द आया, अग्नि शिखेव रुद्ध, यानी कि भोजेंद्र, भोज के इंद्र कौन है, कंस, राजा है। तो देवकी वहां पर अग्नि के द्वारा, प्रकाश के द्वारा आच्छादित, प्रकाश हो गया ना, चारों तरफ फैल गया, तो इसलिए आप तुलना की गई उसे, अग्नि शिखेव रुद्ध। जब बहुत ज्यादा प्रकाश हो जाता है तो कई बार व्यक्ति नहीं दिखा पाता, दिखाई पड़ता है ना, रोशनी के कारण। तो इसी कारण से माता देवकी भी ऐसा लग रहा था कि ढक गई है प्रकाश के कारण। अग्नि शिखेव रुद्ध, रुद्ध मतलब अवरुद्ध हो गए, ढक गए माता देवकी, इतना प्रकाश निकल रहा था, जैसे चैतन्य महापुरुष ने भी अपने आप को ढक दिया था प्रकाश, नाम सर्व क्या है, नाम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अभ्ययम्। चैतन्य महाप्रभु जब प्रकाशानंद सरस्वती के पास गए तो उन्होंने अपना केवल ब्रह्म तेज प्रकट किया, वो भी बड़ा अंश मात्रा में, थोड़ा सा उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाया और उसी से जो है प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जितने भी आए हुए मायावादी सन्यासी थे वो बड़े प्रभावित हो गए, उसी से वो प्रसन्नचित हो गए, हमें साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो माता देव की जिस प्रकाश से आच्छादित हो गई थी वो प्रकाश भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर से निकल रहा था, ये मूर्ख मायावादी लोग नहीं समझ सकते इन बातों को। और ऐसे साक्षात कृष्ण को मायावादी लोग देख भी नहीं सकते हैं जिन्होंने माता देवकी का आश्रय लिया है या जिन्होंने शुद्ध भक्त का आश्रय लिया है, वही वास्तव में परम भगवान कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं। माता देवकी जो है भक्ति स्वरूप नहीं है, महात्मा नास्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। तो माता देवकी का जिसने आश्रय लिया है या शुद्ध भक्तों का जो आश्रय ले लेता है वो वास्तव में परम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप का दर्शन कर पाता है। नहीं तो अधिकाधिक ऐसे तथाकथित आध्यात्मवादी केवल भगवान कृष्ण के शरीर से निकलती हुई कांति या ब्रह्म तेज का ही दर्शन कर पाते हैं, और जहां पर रहना भी बड़ा कठिन है, वापस आना पड़ता है। तो यह साथ में विश्वनाथ जी ठाकुर ये भी बता रहे हैं कि जब अग्नि जलती है, थोड़ी बहुत अग्नि जलती है घर में, रसोई में या कमरे में चूल्हे में जलाते हैं, अग्नि जल पड़ती है और फिर कई बार मोमबत्ती जलानी पड़ती है बिजली जाने पर, या फिर ठंड के मौसम में कई घरों में तो अग्नि जला लेते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में हवेलियों में वो क्या करते हैं, लकड़ी जला लेते हैं, उसके लिए अलग से जगह होता है ड्राइंग रूम में, तो उससे प्रकाश निकलता है और कमरे का अंधकार दूर होता है। लेकिन इतना भी प्रकाश नहीं होता है कि शहर का अंधकार दूर कर पाए, या गांव में अगर जल रहा है किसी झोपड़ी में रोशनी है, अग्नि जल रही है, तो गांव की रोशनी अंधकार को, गांव के अंधकार को दूर नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आग लग जाए किसी घर में या किसी एकाध घर में आग लग जाए तो ऐसे आग का जो प्रकाश है वो पूरे गांव को प्रकाशित कर सकता है। कई बार बिल्डिंग में आग लग जाती है तो चारों तरफ आपको अग्नि की लपटें नजर आती हैं और धुआं निकलने लगता है और चारों ओर ऐसा लगता है कि प्रकाश फैल रहा है उस अग्नि का, और दूर दूर से लोग देख सकते हैं कि आग लग गई, आग लग गई। उस आग के कारण होता क्या है, अंधकार दूर हो जाता है। तो विश्वनाथ जी ठाकुर ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे आग के कारण, ऐसे प्रकाश के कारण क्या हुआ, अंधकार दूर हुआ। माता देवकी के घर में भगवान कृष्ण जो प्रकट हो गए हैं उस कारण से क्या हुआ, ये वो आग है जो केवल कंस के कारागार को ही प्रकाशित नहीं कर रही है, संपूर्ण ब्रज को प्रकाशित कर रही है, संपूर्ण भौतिक जगत को प्रकाशित कर रही है। यस्या प्रभा प्रभव तो जगदंत कोटि कोटिश अशेष क्या है विशुद्धादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमम जाने। यस्या प्रभा प्रभव तो जगदंत कोटि, उनके प्रभा से, उनके शरीर से जो दिव्य कांति निकलती है अनंत कोटि ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। ये तो माता देवकी के गर्भ में स्वयं भगवान कृष्ण प्रकट हो गए हैं, तो क्या नहीं प्रकाशित कर सकते हो, सब कुछ तो प्रकाशित हो रहा है, सब कुछ प्रकाशमान हो रहा है। और इससे यह संकेत मिलता है कि माता देवकी के कारण कंस का विनाश होगा। सबसे बड़ा अंधकार क्या है, कंस, अविद्या का स्वरूप, अंधकार का स्वरूप कंस है, उसका विनाश होने वाला है, ये संकेत दे रहा है। सरस्वती ज्ञान खले, यहां पे लिखा है देखिए, सरस्वती ज्ञान खले, इसका अर्थ बता रहे हैं कि ज्ञान जो वितरित नहीं किया जाता है, जब जिस ज्ञान का वितरण नहीं होता, तो जिसके पास अगर ज्ञान है वो अगर ज्ञान का वितरण नहीं करता तो वो ज्ञान उसी को ही मार देता है। ज्ञान जिसके पास है अगर उस ज्ञान का वितरण नहीं करता है, विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं, ऐसा ज्ञान उस व्यक्ति को ही नष्ट कर देता है। तो ज्ञान का वितरण होना चाहिए, और ये ज्ञान यानी कि माता देवकी के घर में भगवान कृष्ण जो प्रकट हुए हैं, जो ज्ञान के सूचक हैं, वास्तविक ज्ञान के सूचक हैं, और निश्चित रूप से हर प्रकार के अविद्या को, हर प्रकार के अंधकार को दूर करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। ऐसे ज्ञान का वितरण होगा। माता देवकी के हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए हैं, जो ज्ञान के सूचक हैं, वो केवल कंस के कारागार को ही प्रकाशित नहीं कर रहे हैं, बल्कि संपूर्ण भौतिक जगत के अंधकार को, अविद्या का दूर करने वाले हैं। तो वास्तव में जिसके पास भक्ति है, वास्तव में जिसके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ना कि दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो गया गुरु की कृपा से, और जब गुरु की कृपा से वो दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हुआ है अगर, तो निश्चित रूप से उसका वितरण होगा। दक्षिणा ज्ञान संदेश भगवान कृष्ण उद्धव जी को कह रहे हैं। दक्षिणा जब क्या है जो गुरु को दी जाती है, वो क्या है, असली दक्षिणा क्या है, जिस ज्ञान को प्राप्त किया है शिष्य ने गुरु के द्वारा, उस ज्ञान का वितरण होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं ये असली दक्षिणा है, दीक्षा का अर्थ यही है, दी और क्षा, दिव्य ज्ञान के द्वारा अज्ञानता की क्षति होती है, अविद्या की क्षति होती है, अंधकार की क्षति होती है। तो दिव्य ज्ञान जब प्राप्त करते हैं गुरु के द्वारा, तो विधान को बताया गया है, दीक्षा को एक विधान बताया गया, प्रोसेस बताया गया है, सनातन गोस्वामी को प्रोसेस बता रहे हैं। इस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, शिष्य की अज्ञानता दूर होती है, अविद्या दूर होती है, दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, और दिव्य ज्ञान प्रकाशित होने पर ऐसा शिष्य उस दिव्य ज्ञान का वितरण करता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर समझने की है कि ज्ञान का वितरण होना चाहिए। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसा ज्ञान जो है ऐसे व्यक्ति को नष्ट कर देगा जो ज्ञान का वितरण नहीं कर रहा है, और ऐसा ज्ञान का ना वितरण करने वाला व्यक्ति जो है अत्यंत पापी है। और माता देवकी जो है वो निश्चित रूप से ऐसे अपराधी कंस को नष्ट करेंगे, वो कारण बनेंगे, निमित्त बनेंगे। तो इस तरह ये विश्वनाथ ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, और साथ में इस बात से हमें ये भी संकेत मिलता है, जैसे कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अतेव आमी आज्ञा दिलू सवा कारे, जहां तहा प्रेम फल देह जारे तारे। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति को, मैं केवल भारतवासी को नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को मैं आगे आज्ञा देता हूं कि इस कृष्ण भावना आंदोलन को अपनाए और इसका वितरण करें। अतएव आमी आज्ञा दिनु सवाकारे, सवाकारे मतलब सबको मैं आज्ञा देता हूं, जहां तहां मतलब जहां कहीं भी आप हो, आप क्या करें, प्रेम फल देह जारे तारे, आप क्या करें, इस प्रेम फल का वितरण करें। प्रभुपद कह रहे हैं तात्पर्य में कि दुख की बात है, लेकिन भारतवासियों ने यह जिम्मेदारी नहीं निभाई। हालांकि भगवत गीता का दुर्लभ ज्ञान इस देश में उपलब्ध है, लेकिन भारतवासियों ने इसको छुपा के रखा। ऐसा तथाकथित कर्मकांडी ब्राह्मण थे जिन्होंने शास्त्रों के अर्थ को नहीं समझाया, केवल अपने परिवार तक ही सीमित रखा। और इस कारण से ज्ञान लुप्त हो गया। प्रभुपाद बता रहे हैं कि बर्तन में अगर पानी हो और उसमें छेद हो जाए तो पानी सारा निकल जाता है। इसी तरह से अगर ज्ञान का वितरण नहीं होता है तो ज्ञान फिर हमारे हृदय से दूर हो जाता है। जितना ज्ञान का वितरण करेंगे उतना ज्ञान हमारा बढ़ेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हम ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन हमें याद नहीं होता है, तो याद करने का कलयुग में सबसे आसान तरीका है, स्मरण करने का कलयुग में तरीका है कीर्तन। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वैष्णव के भजन की रचना की जिसमें वो कहते हैं कीर्तन के प्रभाव से कलयुग में स्मरण होता है। तो जो जितना अधिक प्रचार करेगा, जितना अधिक ज्ञान का वितरण करेगा, जितना अधिक संकीर्तन करेगा उतना अधिक उसको स्मरण होगा। यह प्रोसेस है कलयुग में, इसलिए कलयुग का धर्म नाम संकीर्तन है। नाम संकीर्तन में इतनी शक्ति है कि हर प्रकार की विद्या दूर करता है और दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित करता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एकल माला करो आमी को तो फल खाब ना दिए वह जई फल आर की कोरीब की कोरीब। एकमात्र माली मैं ही हूं और अगर मैं इस फल का वितरण नहीं करूंगा तो इन फलों के साथ मैं क्या करूंगा, इतने सारे फलों का मैं क्या करूंगा, अकेले मैं कितना फल खा सकता हूं, अकेले कितना फल खा लोगे। मान लीजिए आप के पास बगीचा है और आम का पेड़ है और बहुत सारे आम निकल आए उसमें, आप अकेले मालिक हैं उसके बगीचे के, तो अकेले आम कितना खा लेंगे आप, कितना भी स्वादिष्ट हो आम, कितना भी मीठा हो, कितना आम खाओगे आप, पेट खराब हो जाएगा, दस्त लग जाएगा आप। इसलिए आम का पेड़ ये संकेत दे रहा है कि इतने सारे आम हैं वो वितरण करने के लिए है, अकेले खाने के लिए नहीं है। प्रकृति से भी हम शिक्षा ले सकते हैं, अनाज इतना सारा क्यों उत्पन्न होता है, वितरण के लिए। सब्जी तरकारी इतनी उत्पन्न क्यों होती है, वितरण के लिए। दूध इतना सारा क्यों मिलता है, वितरण के लिए, मिलावट के लिए नहीं। सही मात्रा में संतुलित रूप से वितरण किया जाए तो किसी प्रकार की कमी नहीं है वास्तव। लेकिन लोग अगर स्वार्थ के कारण इंद्र तृप्ति के लिए क्या करेंगे, अगर इसको संचित करते रहेंगे, होड़ करते रहेंगे, तो समाज में केवल उत्पात ही उत्पात मचेगा, जैसे उत्पात मच रहा है आजकल। आज समाज में कमी है हर चीज की। कल ही हम चर्चा कर रहे थे प्रभु जी से कि आज के समय में दूध मिलना बड़ा दुर्लभ हो गया है। क्यों मिल गया, क्यों मिलना दुर्लभ हो गया है, कई कारण है। एक तो गायों को मारा जा रहा है, भैंसों को मारा जा रहा है, और अगर गाय और भैंस है भी उनसे जबरदस्ती दूध निकाला जा रहा है। जबरदस्ती दूध निकाला जाता है, ऐसे दूध पीने से उसका असर दिमाग पर पड़ता है, शोषण करने से, इंजेक्शन लगा के। और वेस्ट में तो मशीन्स लगा देते हैं स्तनों में, गाय के स्तनों में मशीन्स लगाते हैं जिससे जबरदस्ती दूध को खींचा जाता है, इंजेक्शन लगा के दूध निकाला जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, केवल धन के लालच के लिए। अभी हाल ही में अमूल कंपनी है, काफी नाम है उसका, उस कंपनी का भी नाम खराब किया गया। कैसे, पैकेट खोल के खरीदा कुछ लोगों ने, भारी मात्रा में खरीदा, पैकेट खोला, पैकेट खोलकर उसमें से एक लीटर दूध है अगर तो आधा लीटर निकाल लिया और उसमें फिर पानी भर दिया गटर का, पैकेट बंद कर दिया, पब्लिक में वो पैकेट चला गया और असली दूध मिल गया इनको, उसको फिर बेच दिया, तो कितना पैसा कमा लिया, डबल पैसा कमा लिया। तो इस तरह से नुकसान किसको हुआ, कंपनी को नुकसान, और पब्लिक को क्या मिला, जहर। तो इस तरह से हर चीज में मिश्रण हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो है आज इतना लालची हो चुका है, इतने लोभी हो चुके हैं लोग कि हर चीज को संचित करना चाहते हैं। भय है लोगों को, डर है, हर व्यक्ति रातों रात धनी बनना चाहता है, इतना धन इकट्ठा करके लगते हैं लोग कि उसमें दीमक और कीड़े लगने लगते हैं और लोग घबराते हैं कि धन का करें क्या, फिर रात भर नींद नहीं आती है, तनाव में रहते हैं, खुद भी बीमार रहते हैं, दूसरों को भी बीमार कर रहे हैं। गिया जो इतने साइज का होता है, इंजेक्शन देते हैं सुबह, वो गिया इतना बड़ा हो जाता है। करेले को डाई किया जाता है हरे रंग के पानी से तो करेला चमकता हुआ नजर आता। पालक, कई प्रकार की सब्जियां गटर के पानी में धोई जाती हैं और धोने के बाद आपको ऐसा लगता है कि वो चमक रहा है। तो कई प्रकार के कीड़े कीटाणु उस सब्जी में घुस जाते हैं जो दिमाग को नुकसान पहुंचाते हैं, इससे ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, हो रहा है। और आज तो बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही हैं जिसके बारे में नाम भी नहीं सुना। सुअर के कारण बुखार हो रहा है, यह भी अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है। हमें सब कुछ अमेरिकन चाहिए तो बीमारी भी वहां की मिलेगी हमें। और ये स्वाइन फ्लू जिसको कहते हैं, ये बड़ी आसानी से पकड़ता है, केवल छूने मात्र से आपको बुखार हो जाए। स्पर्श दोष, एक था पहले संग दोष, अब स्पर्श दोष, छूना भी जो है खतरा है किसी को। इसलिए क्या किया गया, कई स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और पूना जैसे शहरों में, बंबई में, पूना में, पूना में तो हमारे इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी नहीं मना पा रहे। सरकार ने कई स्कूल कॉलेजेस बंद कर दी और लोग, सामान्य जनता मास्क पहन के घूम रही है। रिसेशन की अलग समस्या है जिसके कारण प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 घंटे नौकरी करनी पड़ती है गधे की तरह। लिखा ना भक्ति ठाकुर ने, यह अविद्या गधे की तरह काम कराती है। यह सच है, ठाकुर भक्ति लिख रहे हैं 19th सेंचुरी में, 1800s में, और आज ये बात बिल्कुल सच हो रही है भारी मात्रा में, थोक में, होलसेल में। हर प्रकार से हम लोग पीड़ित हैं और बोलते हैं कि सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि सूखा पड़ गया है। तो महाराज ने पूछा उससे क्या होगा, किसी भक्त ने बताया महाराज को कि महाराज सरकार ने अनाउंस कर दिया है कि ड्रॉट, सूखा हो गया है। महाराज ने पूछा इससे क्या होगा, महाराज इससे जो है कीमत बढ़ जाएगी सबकी, सबकी कीमत बढ़ जाएगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा, अनाज महंगा हो जाएगा, सब्जी महंगी हो जाएगी, सब महंगा हो जाएगा, दूध महंगा हो जाएगा। अनाउंस करने का मतलब ही है कि सब कुछ बढ़ाओ, सबका दाम बढ़ाओ, सब कमाओ, हम भी कमाते हैं तुम भी कमाओ। लोग इतने ज्यादा आसुरी स्वभाव के हो गए हैं, दुष्ट हो गए, ये सब अविद्या का प्रचार हो रहा है मीडिया के द्वारा, न्यूज़पेपर्स के द्वारा, सब अविद्या का प्रचार हो रहा है। लोग अत्यंत दुखी हैं लेकिन फिर भी जो है, और हल भी है हमारे पास, और हल केवल हमारे भक्तों के पास है, इस आंदोलन के पास ही केवल हल है और किसी के पास हल नहीं है। आज बारिश की कमी क्यों है, क्योंकि यज्ञ नहीं कर रहा कोई, यज्ञात भवती पर्जन्य, यज्ञ से बारिश होती है और यज्ञ नहीं हो रहा है, किसान लोग परेशान हैं, दुखी हैं। आपके पास सारी टेक्नोलॉजी है लेकिन बरसात नहीं करवा सकते आप। तो पृथ्वी का जब शोषण होता है तो इसी तरह से पृथ्वी जो है फिर अपनी प्रतिक्रिया दिखाती है, सूखा पड़ता है, बाढ़ आती है। किसी ने हमसे प्रश्न किया, चीरापूंजी में तो हमेशा बारिश होती है, वहां तो यज्ञ नहीं कर रहा कोई। लेकिन जरूरत से ज्यादा बारिश होना ये यज्ञ का लक्षण नहीं है, ये कलयुग का लक्षण है। सूखा होना ये कलयुग का लक्षण है, ये यज्ञ के कारण नहीं है। यज्ञ के कारण जब बरसात होती है, प्रभुपाद कहते हैं ऐसी बरसात रात्रि के समय होती है, संतुलित होती है, और दिन के समय धूप निकलती है जो खेतों के लिए, फसल के लिए लाभदायक होती है। लेकिन जो असंतुलित वर्षा होती है वो कभी भी हो जाती है, अचानक हो जाती है, जिससे बाढ़ की संभावना रहती है। बिहार में, बंगाल में बाढ़ आ गई, ये सब यज्ञ हो रहा है वहां पे, सब पाप हो रहा है या फिर सूखा पड़ जाता है, ये यज्ञ के कारण हो रहा है? नहीं। तो चेरापूंजी में या राजस्थान में या उत्तरी भारत में अगर सूखा या बाढ़ आ रही है, ये सब पाप के कारण है। सही ज्ञान का वितरण नहीं होगा तो कंस जैसे राक्षस जो है उनकी संख्या बढ़ेगी, अंधकार बढ़ेगा, अविद्या बढ़ेगी। इसलिए ऐसे ज्ञान का वितरण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम संकीर्तन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यथाशक्ति का मतलब है कि शक्ति के अनुसार ज्ञान का वितरण ना करना। जितनी आपकी शक्ति है उतना आप ज्ञान का वितरण नहीं करो। ज्ञान को छुपा के आपने रखा हो, इसलिए ज्ञान खले बताया गया। ज्ञान को छुपा रखना, हमारे पास भागवतम है, भगवद गीता है, इतने सारे ग्रंथ हैं, हम जानते हैं कि सोल्यूशन क्या है, हरिनाम संकीर्तन है, फिर भी हम मंदिर से बाहर नहीं निकलते हैं प्रचार के लिए, तो दोष हमें लगेगा ना। दोष उन लोगों का नहीं है, वो तो अविद्या में है ही, लेकिन हमें तो ज्ञान है ना, तो दोष हमें ज्यादा लगेगा। अपराधी हम ज्यादा हैं, उन लोगों से ज्यादा अपराधी हम हैं अगर हम ज्ञान का वितरण नहीं करते हैं। जानते हुए भी अगर हम ज्ञान का वितरण नहीं करते हैं तो हम लोग दोषी हैं। ये विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं, टीका में बता रहे हैं। तो ज्ञान का वितरण होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है इस आंदोलन के भक्तों के ऊपर कि इस ज्ञान को पहुंचाने के लिए, इस ज्ञान का वितरण करने के लिए प्रभुपाद ने भक्तों को ये शक्ति दी है। महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने हमें शक्ति दी है। इस आंदोलन के भक्तों के पास ही ये शक्ति है, केवल किसी के पास शक्ति नहीं है। कौन, कितने लोग प्रचार कर रहे हैं? आप जाइए ब्रज में, जाइए मायापुर में, जाइए, कितने लोग प्रचार कर, कोई प्रचार नहीं कर रहा है। सब बैठ के केवल ग्रंथ पढ़ रहे हैं और श्लोक याद कर रहे हैं बस। लेकिन विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, इस प्रसंग से बता रहे हैं कि अगर ज्ञान आपके पास हो तो उसका वितरण करो। तो प्रभुपाद को यह शक्ति प्राप्त है, चैतन्य महाप्रभु से शक्ति प्राप्त है। चैतन्य महाप्रभु ने प्रभुपाद को यह शक्ति दी है। प्रभुपाद ने पूछा कि महाप्रभु ने विदेशों में क्यों नहीं प्रचार किया? प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, क्योंकि महाप्रभु मुझे श्रेय देना चाहते हैं। तो इस ज्ञान का वितरण होना चाहिए, नहीं तो फिर हम लोग क्या है, ब्राह्मण नहीं है, हम लोग फिर कृपण है, फिर नाम के ब्राह्मण है। केवल जने धारण करने से क्या होगा? जैसे राधा दामोदर मंदिर में एक शिष्य गया राधा दामोदर का दर्शन करने के लिए, तो पुजारी ने उस भक्त को देखकर कहा, प्रभुपाद जी के शिष्य था, विदेशी था, तो पुजारी ने कहा, राधा दामोदर से मैं प्रार्थना करता हूं कि अगले जन्म में तुम्हें इनकी पूजा सेवा करने का मौका मिले, तुम पुजारी बन सको। तो वो भक्त बेचारा चुपचाप चला गया। उसने जाके प्रभुपाद को बोला, प्रभुपाद उस पुजारी ने मुझे ऐसा कहा। तो प्रभुपाद ने कहा, तुमने क्या कहा? उसने कहा, प्रभुपाद मैंने कुछ नहीं कहा। तो प्रभुपाद ने कहा, उसको जाके कहो कि मैं भी प्रार्थना करता हूं राधा दामोदर से कि अगले जन्म में तुम प्रचारक बन सको। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि हमारा आंदोलन केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद ने इन सबको घंटी बजाने दो, लेकिन हमें यह महाप्रभु का आंदोलन जो है बढ़ाना है, प्रचार करना है। ये प्रचार का आंदोलन है। जो प्रचार नहीं है कर रहा वो सूख गया व्यक्ति वास्तव में। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं, प्राण अच्छेदार सही होते प्रचार। जिसके पास प्राण है, जिसके पास जीवन है, जिसके पास चेतना है, वो प्रचार करें। अभी हाल ही में सोलन में जयप्रता का महाराज अपने शिष्यों को बता रहे थे, बड़ा अच्छा बताया महाराज ने। महाराज आए हुए हैं वहां पर बड़े मंदिर में, कभी आप सब आइए दर्शन करने के लिए। महाराज यहाँ पर रहने वाले हैं कम से कम इस महीने के अंत तक। तो महाराज बता रहे हैं, अपने शिष्यों को बोल रहे थे, महाराज डांट रहे थे बाल कहते तुम शिष्य लोग जो है मुझे मार रहे हो, मैं ये शरीर थोड़ा हूं, मेरे पास अभी भी लाइफ है, ये जीवन है, और अगर लाइफ है मेरे पास तो मुझे प्रचार करने दो, ये तो फायदा क्या शरीर का, ये शरीर बेकार है। और ये देखिए ये वैष्णव होता है, ऐसी हालत में भी उनके हृदय में क्या कहते हैं कि करुणा की आग, करुणा उनके अंदर जो है भड़क रही, वो करुणा जो है करुणा को रोक नहीं पा रहे हैं, कंपैशन जो है ओवरफ्लो कर रहा है। जब कंपैशन ओवरफ्लो करता है उसी को औदार्य कहते हैं। कंपैशन को अगर छुपा के रखते हैं तो फिर वो उसका इतना लाभ नहीं। ये चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन औदार्य रस का वितरण कर रहा है। शहद का बोतल है, अगर शहद बोतल के भीतर है वो अच्छा है, लेकिन शहद अगर बाहर टपक रहा हो तो अन्य जीवात्माओं को भी लाभ मिलता है, जैसे चींटी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो भी लाभ उठाते हैं शहद का। तो ज्ञान का वितरण होना चाहिए। प्रभुपाद ने करके दिखाया, आखिरी समय तक प्रभुपाद ने प्रचार किया, संदेश दिया, उपदेश दिया। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो इस आंदोलन में भक्त जुड़े हैं उनको केवल अपने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, और अगर ज्ञान हासिल किया है एवं परंपरा प्राप्तम, यदि भी ज्ञान प्राप्त किया है तो उसका आगे वितरण होना चाहिए। जो वास्तव में इस मूड को नहीं समझा है, प्रचार के मूड को, वो इस आंदोलन में रहते हुए भी जीवित नहीं है, वो मरा हुआ है। केवल रहने मात्र से इस आंदोलन का लाभ नहीं मिलेगा, चार दीवारी में रहने से जो है हम ये नहीं कह सकते कि हम आंदोलन से जुड़े हैं। अगर इस आंदोलन से जुड़े हैं तो हमें प्रचार के आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा, प्रचार के कार्यों में जुटना पड़ेगा, और तब तक हमारे अंदर शक्ति रहेगी, कृष्ण भावना की शक्ति रहेगी, नहीं तो हम सब आध्यात्मिक रूप से कमजोर पड़ जाएंगे। हम आपस की बीमारियों में ही उलझे रहेंगे और उसी का ही चिंतन करते रहेंगे, मेरे ये अनर्थ है, उसमें ये अनर्थ है, इसमें ये अनर्थ है, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसी में पूरा जीवन हमारा बीत जाए। लेकिन अगर प्रचार करेंगे एक नया उत्साह बना रहेगा, और ऐसे उत्साह से हम एक दूसरे की कमियां नहीं देखेंगे, और फिर एक नया वातावरण जो है हम लोग जागृत कर सकते हैं। चारों तरफ प्रकाश होगा, मंदिर में भी प्रकाश होगा, बाहर भी प्रकाश होगा, हर जगह प्रकाश होगा, अंधकार अपने आप दूर होगा। तो संकीर्तन में हरि नाम में इतनी शक्ति है। अभी महाराज ने हमें आदेश दिया है, बड़े मंदिर में हम करने वाले हैं इस जन्माष्टमी के बाद, कि हफ्ते में मंदिर के जितने भी भक्त हैं वो पूरे दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए नहीं, पूरे दिन के लिए सुबह से शाम तक हरिनाम में जाएंगे और बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, क्योंकि नहीं तो हम सब आलसी हो जाएंगे, और फिर हम लोग ये चिंता करेंगे मेरे पेट में दर्द है, किसी को पीठ में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है। अरे शरीर में तो दर्द ही रहेगा, इस शरीर तो अविद्या का जाल बता दिया है, इस शरीर से क्या आशा कर रहे हैं हम लोग? जितने आशा इस शरीर से करोगे ये शरीर आपको निराशा ही देगा। जितना जीवन बीता है उसको आप लगा दो प्रचार में, बस उसी में हमारा जीवन सार्थक है। तो जीवन के अंतकाल में तो खटिया पकड़नी है हमने, और अगर रोते रहे तो रोते ही रहेंगे फिर। तो इसलिए रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए हमें बीमारी है तो बीमारी को साथ लेके चलो, लेकिन प्रचार का कार्य बंद नहीं होना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक तो बीमारी लगी रहेगी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आंदोलन अब बंद हो जाएगा या मंदिर बंद कर देंगे क्योंकि हम सब बीमार हैं। असली बीमारी हम सबको है अगर, वो है मन की बीमारी। 99.9% हम सब मन के रोगी हैं। अब देखिए महाराज को देखिए, हम बता रहे थे महाराज को उदाहरण दे रहे थे, उनका आसक्ति, उनकी आसक्ति, उनका मन महाप्रभु के चरणों में लग चुका है। ये आसक्ति का लक्षण है, जिसकी आसक्ति हो जाती है नाम में, रूप में, गुण में, भगवान की लीलाओं में, वो देह से आसक्ति समाप्त हो जाती है, वो देहात्म बुद्धि में नहीं होता है, फिर वो अपने आप को रोक नहीं सकता है भगवान की सेवा से। और ऐसे में वास्तव में ऐसे वैष्णव जो है वो वास्तव में कष्ट नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा वो सेवा में लगे हुए हैं, हमेशा उनके हृदय में उत्साह है प्रचार करने के लिए, सबको कृष्ण भावना भावित बनाने के लिए। तो ये हमें सीखना है, ये वैष्णव लोग इस जगत में इसलिए यहां पर जीवित है अभी भी, भक्तों ने प्रार्थना की ना, तो ये दिखाना चाहते हैं, ये शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसे शरीर में रहते हुए भी हमें जो है सेवा नहीं रोकनी है। और हमको सबको तो छोटी छोटी बीमारियां लगी हैं जो वास्तव में व्यर्थ है, जिसका कोई अर्थ नहीं, निरर्थक है। तो बीमारियों के बदला ध्यान देते हुए हमें ध्यान देना चाहिए सेवा में, प्रचार में, और हम देखेंगे कि एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिलेगी महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से। हम देखेंगे, हम जल्दी प्रगति करेंगे। जो जितना अधिक प्रचार कार्य में लगेगा वो उतनी तेजी भक्ति में, तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेगा। कुछ भक्त लोग पूछते हैं शॉर्टकट क्या है भक्ति में आगे बढ़ने का, शॉर्टकट भक्ति में आगे बढ़ने का है प्रचार, और कोई शॉर्टकट नहीं है। जो जितना अधिक प्रचार करेगा वो उतने तेजी से भक्ति में आगे बढ़ेगा, यह है शॉर्टकट। और जितना व्यक्ति जो है अकेले बैठा रहेगा, निर्जन तथाकथित निर्जन भजन करेगा, वो कुछ ही समय में देखेंगे वो भोजन करना शुरू कर देगा, उसका भजन भोजन में बदल जाएगा। वो केवल देह की चिंता करता रहेगा, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये बीमारी है, शोक करता रहेगा केवल। तो धृतराष्ट्र की तरह हम लोग मंदिरों में ना रहे, यह आंदोलन धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, यह आंदोलन है अर्जुन की तरह जो भगवान के कहने पर युद्ध करने के लिए तैयार हो। और भगवान चाहते हैं ये प्रचार का आंदोलन है, हम सब युद्ध भूमि में है, और ऐसे युद्ध भूमि में भाग लेकर ही हमें सफलता प्राप्त होगी। 64 करोड़ योद्धा लोग जो है स्वरूप की प्राप्ति हुई। प्रभुपाद एक प्रवचन बता रहे हैं 1971 लंदन में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया, प्रभुपाद बता रहे हैं 64 करोड़ सैनिकों को स्वरूप की प्राप्त, स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई कुरुक्षेत्र में, और सबके सब धाम गए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की इच्छा थी। और इसी तरह से ये महाप्रभु की इच्छा है कि इस युद्ध भूमि में हम लोग प्रचार करें, और क्योंकि ये महाप्रभु की इच्छा है जो प्रचार करते हुए अपना जीवन बिताएगा निश्चित रूप से उसको स्वरूप सिद्धि प्राप्त होगी, वो धाम की प्राप्ति करेगा। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंद।